Hare Krishna, Srimad Bhagavatam, Lecture 4. इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए मन से समस्त भौतिक आसक्ति और बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करके एकाग्रचित से मंगलाचरण कीजिए, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उनका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवदीयोत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदीगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परम सौभाग्य है हमारा कि भगवान ने हमें श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे परम पवित्र ग्रंथ को अध्ययन करने का अवसर प्रदान किया, और उसमें भी आज जो हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वो तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शास्त्र कहता है कि चैतन्य महाप्रभु के विषय में जानने का, पढ़ने का और श्रवण करने का अधिकार हर किसी को प्राप्त नहीं होता। कोई बहुत ही शुद्ध और पवित्र जीव होते हैं जिन्हें यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह महाप्रभु के विषय में कुछ अध्ययन कर सकें या कुछ श्रवण कर सकें। तो हम सबका सौभाग्य है कि आज से हम श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रचारक हैं, प्रथम प्रचारक हैं, उनके जीवन के तथा उपदेशों के विषय में संक्षिप्त में अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे। वास्तव में भक्तों, ये हमारे जीवन की परम सिद्धि है कि हम महाप्रभु के विषय में सुनने जा रहे हैं। महाप्रभु के नाम लेने से, महाप्रभु के विषय में सुनने से, महाप्रभु के विषय में अध्ययन करने से हमारे कृष्ण प्रेम का उदय होता है। हमारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम सुप्त रूप में है, जिस कृष्ण प्रेम ने भौतिक प्रेम की जगह ले ली है, वही प्रेम फिर से कृष्ण के प्रति परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि महाप्रभु को महावदन्याय कहा जाता है। हम कहते हैं नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। वो सबसे बड़े दानी है और संसार का सबसे बड़ा दान क्या है? कृष्ण प्रेम प्रदायते। वो कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए संसार में अवतरित हुए हैं और जब हम उनके विषय में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम है वो उदय हो जाएगा, उजागर हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ईश्वर प्रेम के महान दूत तथा भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक भगवान चैतन्य महाप्रभु बंगाल प्रांत के नवदीप नगर में श्री श्रीधाम मायापुर स्थान में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को 1407 शताब्दी तदनुसार फरवरी 1486 में अवतरित हुए। महाप्रभु के पिताजी श्री जगन्नाथ मिश्रा सिलहट जिले के एक विद्वान ब्राह्मण थे जो विद्यार्थी के रूप में नवद्वीप आए थे, क्योंकि उस समय नवद्वीप शिक्षा तथा संस्कृति का केंद्र माना जाता था। वे नवद्वीप में परम विद्वान श्री नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री श्रीमती शची देवी से विवाह करने के उपरांत गंगा नदी के तट पर निवास करने लगे। यानी जो चैतन्य महाप्रभु के पिता श्री थे जगन्नाथ मिश्रा जी, वो पहले तो स्टडी के लिए आए थे यहाँ नवद्वीप में और वहीं पर एक नीलांबर चक्रवर्ती जो कि बहुत बड़े विद्वान थे उनकी पुत्री शची माता से विवाह किया और वहीं पर रह गए गंगा के तट पर। श्री जगन्नाथ मिश्रा की पत्नी श्रीमती शची देवी से कई पुत्रियां उत्पन्न हुई जिनमें से अधिकांश की मृत्यु कच्ची आयु में ही हो गई। उनको 9 बेटियां पैदा हुई थी लेकिन ज्यादातर पैदा होते ही उनकी मृत्यु हो गई। 2 पुत्र बचे रहे जिनके नाम श्री विश्वरूप तथा विश्वंबर थे। उनके पहले पुत्र बड़े बेटे का नाम विश्वरूप था और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु को विश्वंबर कहते थे, जिन्हें उनके माता पिता का प्यार प्राप्त हो सका। विश्वंबर उनकी 10वीं तथा सबसे छोटी संतान थे जो आगे चलकर निमाई पंडित के नाम से विख्यात हुए और संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु कहलाए। शुरू में उनका नाम विश्वंबर था लेकिन जब नवद्वीप में वो बहुत ही ज्यादा एजुकेशन उन्होंने हासिल कर ली और पांडित्य यानी कि थोड़े से समय में बहुत ज्यादा पांडित्य उन्होंने सारे व्याकरण और जितनी भी स्टडी थी वो उन्होंने कंप्लीट कर दी थी, तो उनको बाद में निमाई पंडित के नाम से जानते थे। और जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाने लगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु 48 वर्षों तक अपनी दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करने के बाद 1455 शताब्दी में पूरी में अंतर्ध्यान हो गए। उनकी आयु टोटल आयु 48 ईयर्स थी और 1455 में वो अपनी लीला को समाप्त करके अंतर्ध्यान हो गए। वे प्रथम 24 वर्षों तक नवद्वीप में विद्यार्थी तथा गृहस्थ के रूप में रहे। उनकी पहली पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रिया थी जिनकी मृत्यु अल्प आयु में हो गई जब महाप्रभु घर से बाहर गए थे। जब वे पूर्वी बंगाल से लौट कर आए तो उनकी माता ने दूसरा ब्याह करने का आग्रह किया जिसे उन्होंने मान लिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम विष्णुप्रिया देवी था जिन्हें आजीवन अपने स्वामी का वियोग सहना पड़ा क्योंकि उन्होंने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया था जब श्रीमती विष्णुप्रिया मुश्किल से 16 वर्ष की ही थी। पहली पत्नी लक्ष्मी प्रिया थी। जब महाप्रभु गया यात्रा के लिए गए थे तो वहां पर कुछ समय उनको अधिक हो गया और लक्ष्मी प्रिया जी महाप्रभु का वियोग सहन ना कर सकी और उसी वियोग में उनकी मृत्यु हो गई। फिर सच्ची माता ने कहा कि अब मैं इतनी अकेली हूँ, आप भी सारा दिन घर पे नहीं होते हो, आप दूसरा विवाह करो। तो माता के आग्रह पर उन्होंने दूसरा विवाह विष्णुप्रिया जी से किया। लेकिन छोटी उम्र में जब अभी तक वो 16 ईयर की थी और महाप्रभु 24 साल के थे और 24 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया तो पूरी जिंदगी विष्णुप्रिया जी को महाप्रभु का वियोग सहन करना पड़ा। संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु ने अपनी माता शशी देवी के आग्रह पर जगन्नाथपुरी के अपनी कर्मभूमि बनाया यानी कि वो वहीं पर जगन्नाथपुरी में ही अपना निवास स्थान बना लिया। वे वहां पर 24 वर्षों तक रहे। उनमें से उन्होंने 6 वर्ष भारत विशेष रूप से संपूर्ण दक्षिण भारत में श्रीमद् भागवतम का उपदेश देते हुए निरंतर भ्रमण करने में बिताए यानी कि वो संन्यास ग्रहण करने के बाद के जो 24 वर्ष थे उनमें से 6 साल तो उन्होंने संपूर्ण जो दक्षिण भारत है वहां पर भागवत महापुराण का प्रचार करने में बिताए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने न केवल श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश दिया अपितु श्रीमद् भगवत गीता का भी अत्यंत व्यवहारिक ढंग से प्रचार किया। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में अंकित किया गया है। दिव्य ज्ञान के इस महान ग्रंथ में उनका अंतिम उपदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि समस्त धार्मिक कृत्यों को त्याग कर उन्हें ही एकमात्र पूजनीय स्वामी के रूप में स्वीकार करें। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 18.66 में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शृण्वच अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मासुच। समस्त किस्मों के धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान ने तो कह दिया आओ, लेकिन महाप्रभु ने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि आपको कैसे आना है मेरी शरण में। उसके बाद श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, फिर उन्होंने अपने भक्तों को आश्वासित किया कि वे समस्त पापों से उनकी रक्षा करेंगे, अतः उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश तथा श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों के बावजूद अल्पज्ञानी लोग भ्रमवश उन्हें एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति मान लेते हैं, अतएव वे उन्हें आदि भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। ऐसे अल्पज्ञ लोग उनके अनेक अभक्तों द्वारा गुमराह बनाए जाते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े विद्वानों तक ने श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों की गलत व्याख्या की है। श्री भगवान श्री कृष्ण के तिरोधान के बाद अनेक उद्भट विद्वानों ने श्रीमद् भगवद गीता पर सैकड़ों टीकाएं की हैं और उनमें से प्रायः प्रत्येक टीका स्वार्थ से प्रेरित है। प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि इतने सुंदर उपदेश श्रीमद् भगवद गीता में हैं, इसके बावजूद भी लोग इतने बेवकूफ हैं कि भगवान को भगवान न मानकर कोई ऐतिहासिक व्यक्ति मान लेते हैं। और क्योंकि उनके हृदय में ऐसा होता है, वो इतने बेवकूफ होते हैं और उनको ऐसा ही सानिध्य प्राप्त होता है और लोग उनको और भी ज्यादा बेवकूफ बना देते हैं, गुमराह कर देते हैं। और वो श्रीमद् भगवद गीता के वास्तविक अर्थ यानी भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने के विषय में नहीं जान पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में जिन्होंने भी टीका लिखी है तो ज्यादातर टीकाएं स्वार्थ प्रेरित हैं, क्योंकि वो भक्त नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं भक्त्या माम अभिजानन्ति, केवल भक्त ज्ञानी मुझे नहीं जान सकता, पॉलिटिक्स मुझे नहीं जान सकता, ध्यानी मुझे नहीं जान सकता। यदि मुझे या मेरे शब्दों को कोई समझ सकता है तो वो केवल मेरा भक्त है। तो श्रीमद् भगवद गीता यदि हम भक्त के मुख से सुनते हैं, यदि किसी भक्त की टीका जैसे श्री प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भगवद गीता की लिखी है, यदि हम उसको पढ़ते हैं तो हम श्रीमद् भगवद गीता के रियल अर्थ को समझ सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री भगवान कृष्ण है, किंतु इस बार वे जन सामान्य को तथा साथ ही धर्म विदों एवं दार्शनिकों को समस्त कारणों के कारण आदि भगवान श्री चैतन्य की दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश देने के लिए भगवत भक्त के रूप में प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण के विषय में बताने के लिए। क्योंकि भगवान ने तो बता दिया ना श्रीमद् भगवद गीता में कि आपको मेरी भक्ति करनी है, लेकिन बताने के बाद भगवान को ऐसा लगा कि ये लोग है ना, जब तक इनको करके नहीं दिखाया जाएगा तब तक उन्हें समझ में नहीं आएगा कि मेरा क्या आदेश है। तो भगवान स्वयं भक्त के रूप में, महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और संसार को कृष्ण भक्ति कैसे की जाती है वो करके दिखाया, प्रैक्टिकली करके दिखाया, आचरण से करके दिखाया कि कृष्ण प्रेम होता क्या है और उसको कैसे किया जाता है। उनके उपदेशों का सार यह है कि ब्रजभूमि वृंदावन में ब्रजराज नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण परमात्मा हैं और सबों के द्वारा पूज्य हैं। वृंदावन धाम भगवान से अभिन्न है क्योंकि भगवान के नाम, यश, रूप तथा उनकी आविर्भाव स्थली परम ज्ञान के रूप में भगवान से अभिन्न होती है। उन्होंने क्या समझाया कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो परमात्मा है, वही भगवान है, हर चीज उन्हीं से उत्पन्न हुई है और वृंदावन धाम भी भगवान से अलग नहीं है क्योंकि भगवान का नाम, गुण, लीला, स्त्री, हर चीज भगवान से अभिन्न नहीं होती है, वो भगवान के ही समान पूजनीय होती है। अतः वृंदावन धाम भगवान के ही समान पूज्य है। भगवान की दिव्य पूजा का सर्वोच्च रूप ब्रजभूमि की गोपिकाओं द्वारा दर्शित भगवत प्रेम के रूप में प्रकट हुआ। यदि भगवान का प्रेम का सही आस्वादन किसी ने किया है तो वो ब्रज की गोपिकाएं हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रक्रिया की पूजा की सर्वोत्तम विधि के रूप में संस्तुति करते हैं। ये जो प्रक्रिया यानी कि भगवान के साथ अपना माधुर्य प्रेम प्रकट करना, ये सबसे पूजा की सबसे सर्वोत्तम उद्धि है कि अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया जाए। वे भगवान को समझने के लिए श्रीमद् भागवतम महापुराण को निष्कलंक साहित्य मानते हैं और उपदेश देते हैं कि सारे मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य श्रीमद् भागवतम प्रेम या प्रेम अवस्था को प्राप्त करना है। यानी कि अगर हम श्रीमद् भागवतम महापुराण का अध्ययन करते हैं, प्रेम से इसको पढ़ते हैं, तो हमारे हृदय में जो कृष्ण का प्रेम भाव है, कृष्ण का प्रेम है, वो सब उदय हो जाएगा। यानी कि जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम या प्रेम अवस्था हमें प्राप्त हो जाएगी। भगवान चैतन्य के अनेक भक्तों ने, जैसे कि वृंदावन दास ठाकुर, श्री लोचन दास ठाकुर, श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री कवि करणपुर, श्री प्रभुनानंद सरस्वती, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने तथा विगत 200 वर्षों में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री बलदेव विद्याभूषण, श्री श्यामानंद स्वामी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री भक्ति विनोद दास ठाकुर तथा अंत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हमारे गुरु महाराज तथा अन्य अनेक महान विख्यात विद्वानों तथा भक्तों ने भगवान के जीवन तथा उनकी शिक्षाओं के विषय में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। ऐसे ग्रंथ वेदों, पुराणों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत तथा सामान्य आचार्यों द्वारा स्वीकृत अन्य इतिहासों एवं प्रामाणिक साहित्य जैसे शास्त्रों पर आधारित हैं। यानी कि इन सब में कृष्णदास कविराज महाराज ने, वृंदावन दास ठाकुर ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, बलदेव विद्याभूषण, इन सब ने चैतन्य महाप्रभु के विषय में बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि महाप्रभु किस तरह से अद्भुत भगवान के भक्त के रूप में अवतार लिए थे। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सारे जो ग्रंथ हैं वो प्रामाणिक साहित्य जैसे शास्त्र पर आधारित हैं। ऐसा नहीं है कि बस किसी ने लिख लिया किसी के बारे में, ये हर एक शास्त्र में प्रमाण दिया गया है महाप्रभु की भगवत्ता का। उनकी रचना अद्वितीय है और उनका प्रस्तुतिकरण अतुल्यनीय है। जो शास्त्र है उनके साथ किसी का कोई मेल नहीं, बहुत ही अतुलनीय है और वे सब दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण है। दुर्भाग्यवश विश्व के लोग अब भी उनसे अनभिज्ञ हैं, किंतु जब यह हमारा साहित्य जो मुख्यतः संस्कृत तथा बंगलों में है, बंगला भाषा में है, विश्व के सामने प्रकाश में आएगा और जब विचारशील लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा, तो यह रुग्ण संसार भारत में भारत के गौरव से तथा प्रेम संदेश से अप्लावित उठेगा, जो आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा से स्वीकृत न होने वाली विविध भ्रामिक विधियों द्वारा शांत तथा संपन्नता की खोज के व्यर्थ प्रयास में संलग्न है। यानी कि आजकल क्या है, लोग जो आचार्यों की दिव्य परंपरा है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और इसलिए चैतन्य महाप्रभु के विषय में समझ नहीं पा रहे हैं। और इतना दुर्भाग्य है जीव का कि आज तक वो चैतन्य महाप्रभु के अवतार के विषय में नहीं समझ पाया। लेकिन श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यदि हम इन दिव्य ग्रंथों को पढ़ेंगे और जो हमारी परंपरा से आए हुए आचार्य उनके मुखारविंद से उनके वचनों को यदि सुनेंगे, तो हम बहुत ही ज्यादा लाभान्वित होंगे। क्योंकि जब तक हम शास्त्र जो कि प्रमाणिक शास्त्र हैं और प्रमाणिक गुरु आचार्यों की परंपरा से नहीं जुड़ते हैं, तब तक क्या होगा, भ्रांत विधियों के साथ हम शांति और संपन्नता की खोज करने का व्यर्थ प्रयास करते रहेंगे। क्योंकि शांति और संपन्नता जो भगवान श्री कृष्ण ने और जो प्रमाणिक शास्त्रों ने और जो गुरुओं ने बताया है, वही तरीके से प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा से स्वीकृत ना होने वाली विधि विविध भ्रांत विधियों द्वारा शांति तथा संपन्नता की खोज के व्यर्थ प्रयास में संलग्न है सब, क्योंकि वो इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यदि भगवान चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उपदेशों के इस संक्षिप्त वर्णन के पाठक श्रील वृंदावन दास ठाकुर कृत चैतन्य भागवत तथा श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत चैतन्य चरिता अमृत नामक पुस्तकें पढ़ेंगे तो उन्हें काफी लाभ पहुंचेगा। यहाँ तक चैतन्य के बाल्यकाल का संबंध है, उसका अत्यंत ही मनोहारी वर्णन श्री चैतन्य भागवत के लेखक ने किया है, और जहाँ तक उनकी शिक्षाओं का संबंध है वे चैतन्य चरिता अमृत में भली भांति विख्यात हैं। अब वे अंग्रेजी भाषा में भी जनता के लिए हमारे द्वारा लिखित टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य यानी चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अमृत के रूप में उपलब्ध है। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दो शास्त्र ऐसे हैं जिनसे हम चैतन्य महाप्रभु के विषय में बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एक श्री वृंदावन दास ठाकुर द्वारा लिखे गए चैतन्य भागवतम में, जिनमें उनके बाल्यकाल की लीलाएं बहुत विस्तृत से लिखी हुई हैं, और कृष्णदास कविराज महाराज द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ जो चैतन्य चरितामृत के नाम से विख्यात है, उसमें चैतन्य महाप्रभु के जो उपदेश हैं जीवन काल के बाद की, जो संन्यास के बाद का जो जीवन है उसको बहुत ही विस्तृत रूप से लिखा हुआ है। तो और उसके अलावा एक शास्त्र टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य के नाम से भी उपलब्ध है। महाप्रभु के प्रारंभिक जीवन का अंकल उनके प्रमुख भक्त तथा समकालीन शिला मुरारी गुप्त द्वारा किया गया है, जो उस समय एक चिकित्सा शास्त्री यानी वैद्य थे। अब यहाँ पर शबोपा जी मुरारी गुप्त के विषय में बता रहे हैं कि स्टार्ट की जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं थी उनके विषय में मुरारी गुप्त ने बहुत विस्तार से बताया है। जो उस समय क्या थे, एक डॉक्टर थे, वैद्य थे, और महाप्रभु का परवर्ती जीवन उनके निजी सचिव श्री दामोदर गोस्वामी या शिला विश्व स्वरूप दामोदर द्वारा अंकित किया गया है, जो पुरी में भगवान के निरंतर संगी बने रहे। इन दोनों भक्तों ने महाप्रभु के प्राय समस्त कार्यकलापों का लेखा जोखा रखा है, और बाद में चैतन्य संबंधी उपर्युक्त जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं सब श्री दामोदर गोस्वामी तथा मुरारी गुप्त के कड़चों यानी डायरियों के आधार पर तैयार किए गए। पहले चैतन्य महाप्रभु के साथ मुरारी गुप्त और स्वरूप दामोदर, जो कि चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही पर्सनल थे, बहुत हमेशा साथ में रहते थे, फिर जो बाकी जो शास्त्र बनाए गए वो उनकी डायरियों पर आधारित हैं। जो भी चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलाप हैं वो उन्होंने अपनी डायरियों में लिखे थे, और उस हिसाब से वो सारे बाकी जितने भी शास्त्र हैं वो बताए गए। इस प्रकार भगवान ने 1407 शताब्दी में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या वेला के समय जन्म लिया, और भगवत इच्छा से उस संध्या को चंद्र ग्रहण था। ग्रहण की अवधि में हिंदू जनता द्वारा गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने और शुद्धि के लिए वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने की प्रथा है। अतएव जब भगवान चैतन्य महाप्रभु उत्पन्न हुए उसी समय सारा भारतवर्ष हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे स्माम मंत्र की पवित्र दिव्य ध्वनि से गूंज रहा था। भगवान चैतन्य के ये 16 नाम अनेक पुराणों तथा उपनिषदों में उल्लिखित हैं, और इस युग में तारक ब्रह्म नाम से वर्णित हैं। शास्त्रों का अभिमत है कि यदि भगवान के इन पवित्र नामों का निष्कलुष भाव से उच्चारण किया जाता है तो भावबंधन से पतित जीवों का उद्धार हो सकता है। भारत में तथा अन्यत्र भगवान के असंख्य नाम हैं, और वे सभी समान रूप से उत्तम हैं, क्योंकि वे सभी भगवान के सूचक हैं। क्योंकि ये 16 नाम इस युग के लिए विशेष रूप से संस्तुत किए गए हैं, अतः लोगों को चाहिए कि इनका लाभ उठाएं और इन महान आचार्यों के पद का अनुसरण करें, जिन्होंने शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए सफलता प्राप्त की है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था, उस समय चंद्र ग्रहण था, तो जैसे चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए तो सारा नवद्वीप जो है वो महामंत्र की ध्वनि से गूंज उठा, क्योंकि ये महामंत्र जो है वो कलयुग के लिए परम पावन है और कलयुगी जीवों के लिए यही एक महामंत्र ही सिद्धि का एकमात्र रास्ता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्र में इसको तारक ब्रह्म महामंत्र के नाम से कहा गया है और इस कलयुग में इस महामंत्र के अतिरिक्त सिद्धि का और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। इसलिए हमें इस महामंत्र से लाभ लेना चाहिए और सदैव इसका उच्चारण करना चाहिए। महाप्रभु का आविर्भाव तथा चंद्र ग्रहण का एक साथ घटित होना भगवान के विशिष्ट उद्देश्य का सूचक है। यह उद्देश्य था कि इस कली यानी कलह युग में भगवान नाम कीर्तन की महत्ता का उपदेश करना। इस आधुनिक युग में छोटी छोटी बातों पर कलह होने लगती है, अतएव शास्त्रों ने इस युग के लिए अनुभूति के जिस सर्व सामान्य मंच की संस्तुति की है वह है भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन। लोग अपनी अपनी भाषा में तथा मधुर गीतों द्वारा भगवान की महिमा का गायन करते हैं और गायन करने के लिए सभाएं कर सकते हैं, और यदि ऐसी सभाएं निष्कुलश भाव से की जाए तो यह निश्चित है कि सभी भाग लेने वालों को किसी कठिन विधि का पालन किए बिना ही क्रमशः आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसी सभाओं में विद्वान तथा मूर्ख, धनी तथा निर्धन, हिंदू तथा मुसलमान, अंग्रेजी तथा भारतीय एवं चंडाल तथा ब्राह्मण सभी दिव्य शब्दों को सुन सकते हैं और इस तरह वे अपने मन के दर्पणों से भौतिक संसार की धूल को साफ कर सकते हैं। भगवान के उद्देश्य की पुष्टि के लिए विश्व के समस्त लोगों को चाहिए कि भगवान नाम को मानवीय सर्वभौम धर्म की पुष्टि के लिए सर्व सामान्य मंच के रूप में स्वीकार करें। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कीर्तन की विशेषता के विषय में बता रहे हैं कि सब लोग को मिलकर कीर्तन करना चाहिए, जिससे हमारे हृदय में जमे हुए भौतिक, क्योंकि जन्म जन्मांतर तक से जो हमारे हृदय में भौतिक गंदगी, भौतिक विचार जो है, उनकी वजह से हम भगवान के प्रति अपने प्रेम को निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। और महाप्रभु ने बताया चेतो दर्पण मार्जनम, कि चित्त के दर्पण से इस गंदगी का मार्जन करने का केवल एक ही उपाय है, वो क्या है? भगवान के परम पवित्र नाम का संकीर्तन करना, हरिनाम संकीर्तन। तो यदि जब तक, क्योंकि कृष्ण प्रेम हृदय में उत्पन्न होता है और जब तक हृदय गंदा रहेगा, हृदय पवित्र नहीं होगा, हृदय साफ नहीं होगा, तो कृष्ण प्रेम वहां पर विराजमान नहीं हो सकेगा। इसलिए सबसे पहले हमें अपने हृदय को पवित्र करना है और उसका एक ही तरीका है कि हम भगवान के पवित्र नाम का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, दूसरे शब्दों में भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के साथ साथ ही पवित्र नाम का भी अवतरण हुआ। अभी महाप्रभु अपनी माता की गोद में ही थे कि जब जब उनके पास एकत्रित महिलाएं पवित्र नाम का कीर्तन करती और तालियां बजाती थीं, तो वे अपना रोना बंद कर देते थे। इस विचित्र घटना को सारे पड़ोसी अत्यंत ही आश्चर्य के साथ, आदर के साथ देखते थे। आगे श्री प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छी बात बताते हैं कि कभी कभी तरुणियां उन्हें रुलाने और फिर पवित्र नाम के जप द्वारा चुप कराने में आनंद, जैसे चुप करके बैठे होते ना महाप्रभु गोद में, फिर उनको ऐसे चुनटी काटती थी या ऐसे करती थी, वो रोते थे, फिर वापस से वो महामंत्र उच्चारण करते थे, जोर जोर से तालियां बजाते थे, तो महामंत्र सुनकर महाप्रभु चुप हो जाते थे और आनंद के साथ खेलने लगते थे। इस तरह महाप्रभु अपने बाल्यकाल में ही पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देने लगे थे। वे बाल्यकाल में निम्माई कहलाते थे। यह नाम उनकी प्यारी माता द्वारा रखा गया था, क्योंकि महाप्रभु का जन्म उनके पिता के घर के आंगन में उगे हुए एक नीम के वृक्ष के नीचे हुआ था। वो नीम का वृक्ष अब भी मायापुर में है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, और क्योंकि वहाँ पर हुआ था इसलिए उनकी माता ने उनको निमाई कहना शुरू कर दिया था। जब महाप्रभु को 6 मास की आयु में अन्न प्रशासन संस्कार के समय उन अन्न खिलाया गया, तो उन्होंने अपनी भावी लीलाओं का संकेत कर दिया। इस अवसर पर शिशु की भावी प्रवृत्तियों का आभास पाने के उद्देश्य से बच्चे को सिक्के तथा पुस्तकें दी जाती हैं। महाप्रभु की एक ओर सिक्के रखे गए और दूसरी ओर श्रीमद् भागवतम रखे गए। महाप्रभु ने सिक्कों को ना ग्रहण करके भागवतम को ग्रहण किया, यानी कि उस टाइम पर अन्न प्रशासन का एक संस्कार होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे बच्चों को रख के दी जाती हैं। सिक्के होते हैं, चॉकलेट होती हैं, और टॉयज होते हैं, और शास्त्र होते हैं, तो बहुत सारी चीजें रखी गई थी, लेकिन महाप्रभु ने उनमें से श्रीमद् भागवतम महापुराण को ग्रहण किया था। जब वे बाल रूप में आंगन में घुटनों के बल से चल रहे थे, तो एक दिन उनके समक्ष एक सर्प प्रकट हुआ और महाप्रभु उससे खेलने लगे। घर के सारे सदस्य भय तथा आश्चर्य से संतप्त हो गए, किंतु थोड़ी देर के बाद सर्प चला गया और माता ने बालक को उठा लिया। एक बार क्या हुआ था, चैतन्य महाप्रभु छोटे थे, उनके बड़े भाई जो विश्वरूप थे वो घर पे आए और माता को बोला भोजन तैयार नहीं है। तो माता ने कहा कैसे भोजन तैयार करूं, ये निमाई देखो गोद से उतरता ही नहीं है, तो आप इसको पकड़ो, मैं भोजन तैयार करके आती हूँ। तो विश्वरूप ने थोड़ी देर के लिए तो महाप्रभु के साथ खेला, फिर महाप्रभु आंगन में चले गए। तो विश्वरूप को पढ़ाई में बहुत ज्यादा था, वो स्टडी कर रहे थे, उन्होंने देखा ही नहीं कि वो आगे चला गया। तो आगे, क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था, घर के बाहर थोड़ा जंगल जैसा होता था, तो वहां पर एक सांप आ गया और महाप्रभु उस सांप के साथ खेलने लगे। ये सांप नहीं थे, ये तो साक्षात संकर्षण थे, जो महाप्रभु का दर्शन पाने के लिए आए थे और उनके साथ लीला कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब माता आई तो वो भाग गया, और है ना, महाप्रभु सब लोग इस बात को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि महाप्रभु कैसे बाल्यकाल में इतने छोटे होकर इतने खतरनाक सांप के साथ खेल रहे हैं। और माता ने जब सांप चला गया तो उन्हें उठाया और बहुत ही ज्यादा प्यार किया। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के बचपन के लीलाओं के विषय में बता रहे हैं कि एक बार एक चोर उनके आभूषण छीनने के उद्देश्य से उन्हें चुरा कर ले गया, क्योंकि सच्ची माता सदैव महाप्रभु को अच्छे अच्छे आभूषण पहनाती थी। तो एक चोर ने देखा तो उसका दिल ऐसे लगा कि ये सारे आभूषण मैं चोरी करूं, किंतु वे डरे नहीं और उस मोहग्रस्त चोर के कंधे पर चढ़े चढ़े यात्रा का आनंद लेते रहे। वो जितने महाप्रभु जो है ना, वो उनके कंधे पर बैठे और बातें कर रहे थे कि आप कौन हो, छोटी छोटी बातें कर रहे थे, किधर से आए हो, आपका नाम क्या है, आपको कौन सी मिठाई अच्छी लगती है। ऐसे तो यह चोर बच्चे को लूटने के लिए एकांत स्थान की तलाश में था, किंतु ऐसा हुआ कि वह चोर इधर उधर घूमकर फिर से जगन्नाथ मिश्रा के द्वार पर पहुंच गया और पकड़े जाने के भय से उस बालक को तत्काल वहीं पर छोड़ दिया। मतलब महाप्रभु की ऐसी करनी हुई कि वो जिधर से भी जा रहा था वापस वही रास्ता आ रहा था, दूसरे रास्ते से जा रहा था वापस वही रास्ता जहाँ पर उनका घर था ना, घूम फिर के बहुत दूर 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 जाता था कि एकांत जगह पे जाके मैं महाप्रभु के सारे आभूषण उतारूं, लेकिन वापस वही महाप्रभु का जो घर था जगन्नाथ मिश्रा का, वहीं पर आ गया। ये देखकर चोर इतना डर गया कि कहीं मेरे को ये कोई किसी ने पास में तो नहीं बांध दिया, महाप्रभु को उधर ही छोड़ दिया और खुद भाग गया कि कहीं मेरे को कोई पकड़ ना ले। और चिंतित माता तथा पिता परिजन सब बालक को देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि इतनी देर से निमाई नहीं था और जब इतनी देर के बाद देखा तो सब बहुत प्रसन्न हो गए। एक बार एक तीर्थयात्री ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्रा के घर पर पधारे और जब वह भगवान को भोग अर्पित कर रहे थे तो महाप्रभु उसके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने वह भोग ग्रहण कर दिया। एक उनके घर पे ब्राह्मण आया था और ब्राह्मण ने कहा था कि मैं किसी के हाथ का बना हुआ खाता नहीं हूँ, ऐसे मैं खुद ही प्रसाद बनाऊंगा। और प्रसाद करके जब अर्पण करने बैठते तो जैसे आंखें बंद करते और घंटी बजाते तो महाप्रभु ने उनका भोजन खा लिया। उस ब्राह्मण को सारा भोजन फेंक कर फिर से भोग तैयार करना पड़ा। उसने सोचा अब तो ये भोजन है ना, इस बच्चे ने झूठा कर दिया, तो उसको फेंक दिया और दूसरा बनाया क्योंकि उस बच्चे ने छू लिया था। अगली बार भी ऐसा ही हुआ और जब तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ तो बच्चे को पकड़कर सुला दिया गया। यानी कि दो तीन बार ऐसे ही हो रहा था, वो भोजन बना के अर्पण करने होता तो अर्पण में क्या होता है कि भगवान आप आके मेरा भोजन स्वीकार करो, तो भगवान साक्षात खड़े थे तो उनसे रहा ना कि आके मेरा भक्त बुला रहा है तो जाके खा लेते थे। वापिस ब्राह्मण जो है वो वाला भोजन फेंक देते थे और भगवान के लिए दूसरा तैयार करते थे। इस तरह करते करते बहुत रात हो गई। फिर सच्ची माता ने कहा, बार बार उनसे क्षमा मांग रही थी, उन्हें माई को इतना बोलती थी कि आप नहीं जाओ लेकिन फिर भी वो चले जाते थे। फिर क्या हुआ कि निमाई को कमरे में जाकर पकड़ के सुला दिया गया कि अब सो गया है, अब आप करो। और अर्धरात्रि के समय जब घर के सभी लोग सो गए तो उस ब्राह्मण ने अपने द्वारा तैयार किए गए उस विशिष्ट भोग को श्री विग्रह को अर्पित किया। लेकिन उस समय बालक ने पूर्ववत प्रकट होकर उस भोग को झूठा कर लिया। तब वह ब्राह्मण रोने लगा, किंतु चूंकि घर के सारे लोग सोए थे अतः उसका रोना किसी ने नहीं सुना। उस समय बाल स्वरूप भगवान उस भाग्यवान ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और कृष्ण रूप में अपना परिचय दिया। ब्राह्मण को इस घटना को प्रकट ना करने के लिए कहकर बालक अपनी माता की गोद में लौट गए। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर लीला के विषय में बता रहे हैं कि फिर अब जब रात हो गई थी, सब लोग सो गए, तो फिर ब्राह्मण ने आधी रात को वापस से भोजन बनाया और भगवान को जब अर्पण कर रहा था तो वापस से निमाई जाकर वो प्रसाद जुटा करने लगा। ब्राह्मण ने बहुत रोया और कहा कि भगवान क्यों आज ऐसा हो रहा है, आप मेरा भोजन स्वीकार नहीं कर रहे हो। तो फिर निमाई ने उनको अपना कृष्ण रूप में दर्शन दिया और कहा, तुम जिसको भुला रहे हो खाने के लिए मैं वही तो हूँ और इसीलिए तुम्हारे प्रेम से इतना प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारा भोजन स्वीकार करने के लिए आया हूँ। तो और उनको बताया कि आप ना अभी ये वाली बात किसी को बताना नहीं, क्योंकि इस जन्म में मैं भक्त बनकर आया हूँ और भक्ति का मुझे प्रचार करना है। तो ऐसा कहकर वो फिर से अपनी सच्ची माता की गोद में जाके सो गए। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत लीलाओं को हम पढ़ेंगे। कृपया साथ रहिएगा। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।